الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو آج کی کلاس نیند کا نظام سلیپ مینجمنٹ کے موضوع پر ہوتی ہے، جو اپنے حضرت عید الفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ دروس امور خانداری میں حسن انتظام میں سے پڑھا کرتے ہیں. تو سلیپ مینجمنٹ میں جو آخری کلاس میں بات ہوئی تھی وہ رات کو جلدی سونا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت نے کیا فرمایا تھا اس بیان میں، رات کو جلدی سونا کے عنوان کے تحت، کہ شریعت نے کہا کہ عورت عشاء کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد پھر جتنا جلدی ہو سکے سو جائے. جو انسان جتنا جلدی سوتا ہے پھر وہ تہجد کے لیے بھی آسانی سے جاگتا ہے. اس کے تحت آگے بھی فرمایا تھا کہ اچھی زندگی کی ترتیب یہ ہے کہ انسان نیند رات کو پوری کر لے اور اپنے دن کو اپنی عبادت اور اپنی زندگی کے کاموں میں صرف کر لے. تو راتوں کو جاگنا جو ہے نا، یہ صلحہ کا شعور شعار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایکسیپشنز کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن رول کی بات کر رہے ہیں کہ راتوں کو جاگنا جو ہے، یہ جو لاپرواہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا گناہوں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ ان کا شعار ہے. اور اگر اس کی آپ کو صحیح مثال دیکھنی ہو تو کہیں بھی رہتے ہو، تھوڑا سا کبھی تھوڑی دیر کے لیے باہر جو ہے نا وہ رات کو نکل جائے کریں، بس عبرت کی خاطر، عادتاً نہیں، عبرت کی خاطر باہر نکل جائیں. آپ کو سڑکوں پر جو لوگ نظر آئیں گے، دکانوں میں جو لوگ نظر آئیں گے، خصوصاً اگر آپ کسی مڈل ایسٹرن کنٹری کے اندر رہتے ہیں، سعودی عرب میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو، وہاں پہ آپ دیکھ لیں گے کافی شاپس، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کافی کا اور قہوے کا بہت چسکا لگا ہوا ہے، تو یہ راتیں ان کی جو ہیں کافی شاپس ان کی بھری رہتی ہیں. اور ساری ساری رات جو ہیں، پہلے تو صرف مرد ہوا کرتے تھے، اب تو عورتیں بھی ہوتی ہیں، ساری ساری رات عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور فجر تک جو ہے وہ رش لگا ہوا ہوتا ہے. اور فجر کے وقت تو نماز کے لیے نہیں بلکہ ہلا گلا کے لیے اور تماشے کرنے کے لیے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے لیے فجر کے وقت رش لگا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ٹریفک جام ہوئی بھی ہوتی ہے. نماز کے لیے نہیں، یہ نہیں کہ فجر کی فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں تو ٹریفک جام ہو گئی، نہیں. کافی شاپس، یہ اس وقت امت کا حال ہوا ہے، یہ حال ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ رات کو جاگنا یہ نیک لوگوں کا شعار نہیں ہوتا ہے. اور پھر یہی لوگ جو ہے رات کو جاگتے ہیں تو اب یہ دن کو نہیں جاگتے ہیں، یہ دن کو نہیں جاگتے. ایسا نہیں ہوتا کہ رات کو بھی جاگ رہے ہیں پھر دن کو بھی جاگ رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دن کو سوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی برے لوگوں کا، یا برائی میں پڑے ہوئے لوگوں کا، برے لوگوں سے مراد برائی میں پڑے ہوئے لوگوں کا یہی معمول ہوتا ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا تھا کہ اچھی زندگی کی ترتیب یہ ہے کہ انسان نیند رات کو پوری کر لے، دن کو پوری نہ کرے، اور دن کو اپنی عبادت اور اپنے زندگی کے کاموں میں صرف کر لے. اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ دن میں جو ہے وہ مصلی بچھائے اور مستقل نماز پڑھتا رہے، یہ حضرت کی ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ مصلی بچھا کر کے دن بھر نماز پڑھتا رہے، نہیں، بلکہ عبادت سے یہاں پر مراد اللہ کی اطاعت کے کام، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رات کو تو آپ سو رہے ہیں نا، تو وہ سونا بھی عبادت ہے، لیکن اس میں آپ کوئی اور کام نہیں کر رہے ہیں نا، تو کام تو آپ نے دن میں کرنا ہے، اس وجہ سے دن میں عبادت والے کام کرنے ہیں جس میں ساری کی ساری اطاعت شامل ہے. फिर उसके बाद अगले पेज के ऊपर 170 पेज पे स्लीपिंग मैनर्स, सोने के आदाब का ख्याल रखें। तो सोने के आदाब क्या चीज होते हैं? हमें तो जागने के आदाब नहीं आते, तो सोने के आदाब कैसे? तो जो है वो हमें सिखा रहे हैं कि इंसान को चाहिए कि स्लीपिंग मैनर्स यानी सोने के आदाब का ख्याल रखे। सोने के आदाब क्या है? एक हजरत की किताब है ना, बाअदब बानसी। तो उसका बिल्कुल इब्तिदा में ही हजरत ने क्या नकल किया है कि अद्दीनु कुल्लुहु अदब, के दीन तो पूरा का पूरा अदब ही का नाम है। ठीक है, तो दीन तो हमें हर चीज के बारे में गाइडेंस देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज अदब से करनी, दीन यही सिखाता है। हर चीज में आदाब का लिहाज रखना, दीन यही सिखाता है, क्योंकि अद्दीनु कुल्लुहु अदब। तो अब नींद, ये भी तो इंसान के अफाल में से एक फेल है ना, तो अब ये भी अदब के साथ करना, तो उसके आदाब क्या हैं? फरमाते हैं कि इंसान जब सोना चाहे तो उसको चाहिए कि अपने बिस्तर को पहले हाथ मारकर साफ कर ले। यानी इसको बिस्तर झाड़ देना कहते हैं, आप किसी कपड़े से भी उसको झाड़ सकते हैं, हाथ से भी झाड़ सकते हैं। फिर अपनी बाईं तरफ पर सोने की बजाय दाईं तरफ की पोजीशन में सोए, यानी जो आपका राइट हैंड है, राइट शोल्डर है, सीधा दाहिना कंधा, तो उसके ऊपर अपना वजन डाल करके सीधा करवट सोना जिसको कहते हैं। इससे इंसान फ्रेश उठता है। दिल के लिए भी दाईं तरफ पर सोना बेहतर होता है। तो एक तो सुन्नत है सीधे करवट सोना, और मॉडर्न साइंस ने फिर उसके बाद 1400 साल गुजरने के बाद सुन्नत की जो है ना, फिर साइंसी यानी जो जो जिस्मानी अफादियत है वो भी वाजे कर दी। वैसे तो हमारे पुराने अतिब्बा को भी ये पहले से पता था, ऐसा नहीं है कि 14 सदियां गुजरने के बाद इंसान को पता चला है कि इसका फायदा नहीं। मसला ये है कि हमें जो हमारे अतिब्बा थे, जो हमारे जो साइंसदान थे, तो उनकी तो बातें खत्म हो गई, भुला दी गई। तो अब ऐसा लगता है कि 1400 साल के बाद पता चला है इंसान को कि अच्छा क्या था जिस्म जिस्म के लिए, और यानी क्या वो सुन्नत में अच्छाई क्या थी। ये तो अच्छा बुरा तो ये 1400 साल पहले पता चल गया था ना, नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया था, लेकिन जिस्म के लिए उसके फायदे जो है वो 1400 साल के बाद पता चले? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, कुछ चीजें जो है वो पहले नहीं पता थी, वो चीजें अब ज्यादा तफसील से पता चल गई हैं, लेकिन पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तहकीकात मुसलमानों के पास मौजूद थी कि उनको पता था कि इससे जिस्मानी फायदे भी होते हैं। तो लेकिन नियत जो है वो तो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा और अल्लाह की रजा होती थी। तो दिल के लिए भी दाएं तरफ पर सोना बेहतर होता है, चुनांचे जब बाएं तरफ सोते हैं तो इंसान का दिल नीचे की तरफ होता है, यानी बाकी बॉडी ऊपर होती है, आपका बाकी जो रिब केज होता है और आपके जो लंग्स होते हैं वो दिल के ऊपर हो जाते हैं जब आप लेफ्ट साइड पे सो रहे होते हैं। तो इंसान के हार्ट के ऊपर एक तरह का प्रेशर होता है, वजन होता है ना, तो उससे वजन से जो है प्रेशर बन जाता है। तो ये हार्ट के लिए मुफीद नहीं है, यानी नुकसान होता है। ठीक है, बल्कि बच्चा उल्टा सोए यानी पेट के बल सोए तो साइंस ने साबित किया है कि उसको हार्ट अटैक का इम्कान 7 गुना ज्यादा हो जाता है। बच्चे को तो बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि बच्चा और भी कमजोर होता है, तो उसको तो बहुत ज्यादा हार्ट के ऊपर अटैक का इम्कान बढ़ जाता है, और इसको कहते हैं SID यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम SID। तो दाहिनी तरफ सोना सोने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ऐसी जो है वो बहुत सारे वाकयात ये रिसर्च पेपर्स के अंदर भी डॉक्टर्स ने लिखे हैं कि क्रिब ये बच्चे की कॉट भी कहते हैं ना उसको पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्रिब के अंदर बच्चे को सुलाया और उसको पेट के बल सुला दिया, तो फिर उसके बाद बच्चा उठा ही नहीं, मौत आ गई बच्चे को। ठीक है, इन्फेंट्स बेबीज स्पेशली। और हदीस मुबारका के अंदर जहां तक मुझे याद पड़ता है, अभी मुझे जहन में अभी आया नहीं इसको चेक करने का, लेकिन याद पड़ता है कि मैं पढ़ा था कि सबसे बुरी पोजीशन सोने की जो है ना वो पेट के बल सोना है, ठीक है, और दाहिने करवट सोना जो है ये सबसे अच्छी पोजीशन है। अच्छा, इसमें एक बात का बस है कि कुछ लोगों के जो आसाब में अगर कमजोरी हो गई, पट्टों का दर्द वगैरह हो गया, तो हो सकता है कि राइट साइड पे सोने की वजह से जो है ना वो आपके कंधे के अंदर दर्द शुरू हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त जो है फिर वो अपना करवट चेंज कर लें। पेट के बल तो फिर भी नहीं सोए, ठीक है, पेट के बल तो हरगिज ना सोए, लेकिन दूसरी करवट जो है वो सो करके तो कम अज कम जो है वो दर्द तो ठीक हो जाए ना, ये नहीं कि दर्द को बढ़ाए चले जा रहे हैं और दूसरी कोई मुसीबत खड़ी हो गई, मुस्तकिल का जो है वो राइट साइड पे दर्द रहना शुरू हो गया, उसका भी इलाज कर लें, भी दवा वगैरह लेकर के या डॉक्टर के पास करके, अगर नहीं हो सकता तो फिर थोड़ा सा चेंज कर लें। जहन्नुमी जहन्नुम ऐसी पोजीशन में होंगे पेट के बल। अच्छा ठीक है, तो जहन्नुम में जाने से पहले ही बिस्तर को जहन्नुम बनाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, और जहन्नुम में जाने के तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि सोने से पहले इंसान लाइटें वगैरह बंद कर ले और जिक्र करता हुआ सोए, तो यानी सोने के लिए जिस तरह हर काम के लिए एक माहौल जरूरत पड़ती है ना इंसान को, उसी तरीके से सोने के लिए भी सोने वाले माहौल की जरूरत तो पड़ती है, तो लाइट्स बंद कर लें, ठीक है, पुराने जमाने में तो बंद करनी पड़ती थी, अब जो है वो बिजली सस्ती हो गई जहां आती है, जहां नहीं आती तो वहां तो आती ही नहीं, वहां तो सस्ती नहीं, वहां तो उल्टा ज्यादा महंगी होती है, आती भी नहीं और बिल भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जहां पर आती है तो वहां पर बिजली सस्ती होती है, क्योंकि हकीकत यही है कि बिजली जो है ना वो इंतहाई सस्ती चीज है, बिजली को प्रोड्यूस करना उसके दुनिया के अंदर इतने तरीके ईजाद हो चुके हैं, सोलर पैनल से लेकर के विंड टर्बाइन्स और न्यूक्लियर पावर जनरेशन, न जाने क्या क्या, हत्ता के कचरे से जो है वो बिजली बनाना, ठीक है, कचरे से भी बिजली बनाना जो है ना वो भी बायो वेस्ट जिसको कहते हैं, तो इतना सस्ता है बिजली का मामला, लेकिन जो हमारे मुल्क है उनके अंदर बिजली ऐसी चीज है कि जो के यानी बड़ी कीमती तरीन, और कीमती चीजें तो फिर कम कम ही होती हैं, ठीक है, कीमती चीजें तो फिर बहुत ज्यादा नहीं होती, तो इसी वजह से बिजली कम,
नहीं,
ठीक है, तो सोचना चाहिए कि भाई क्यों ये सारी मुसीबत हमारे मुल्क के अंदर क्यों होती है, और खुद ब खुद नहीं होती, वजह होती है, बनाई जाती है मुसीबत, ऐसे खाम खाम में थोड़ी मुसीबत होती है, कल को वो आपकी मुसीबत दूर करेंगे और फिर कहेंगे कि अब हमारी बात मानो, क्यों कि हमने तुम्हारी मुसीबत दूर कर दी है, ठीक है, तो सारे लोग जो है वो खुश होकर के उनकी बात मानेंगे, क्योंकि मुसीबत दूर कर दी, बिजली वाली मुसीबत दूर कर दी, अब बात मानेंगे, सड़कों के टूटने वाली मुसीबत दूर कर दी, अब बात मानेंगे, ठीक है, अब वो कौन सी वाली बात होगी, वो तो फिर ईमान की बात होगी, वो पक्का पक्का जो है ना वो कहेंगे तुम हमारे ऊपर ईमान लेकर के आओ, हमारी बात मानो, हमारी डेफिनेशंस को तुम एडॉप्ट करो, और वो हम बड़ी बड़ी खुश से करेंगे, बड़ी खुशी से करेंगे, ठीक है, तो ये वजह है कि जिसकी वजह से मुसीबत में मुब्तला रखा जा रहा है, हालांकि बहुत आसानी से मुसीबत को दूर किया जा सकता था, लेकिन रखा जा रहा है मुसीबत के अंदर, सारी दुनिया की तैयारी तो उस काम के लिए है, और हम जो है वो मदहोश हैं अपने 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 सेल्फ मेड डिसेप्शंस के अंदर। बहरहाल, तो लाइटें बंद करें, ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल लाइटिंग जो है ना इसको बंद करना होगा, तभी जाकर के फिर इत्मीनान की नींद आएगी, और जिक्र करता हुआ सोए, अल्लाह का जिक्र करता हुआ सोए, जिक्र का फायदा यह है कि जब इंसान जिक्र करता है तो जिक्र में उसके ऊपर जो रहमतें नाजिल होती हैं उनकी वजह से इंसान के ऊपर हल्की सी एक नींद की कैफियत होती है, और यही नींद उसको गहरी नींद में आसानी से मुंतकिल कर देती है, तो जिक्र के सेकेंडरी फवाइद में से एक फायदा क्या कि इंसान के ऊपर नुआस की कैफियत आती है, ठीक है, यानी एक सुकून की, सकीना भी उसको कहते हैं, सकीना। ठीक है, तो जिक्र के नतीजे में सकीना की कैफियत आती है और इससे जो है ना फिर वो सोना भी आसान हो जाता है। अच्छा, जिक्र किसका करते हैं, जिक्र किसका करते हैं, जिक्र जो है वो पूछ क्यों रहा हूं, यानी कि आपको पता नहीं है इसका जवाब, पूछ इसलिए ताकि हम सोचें, ठीक है, कि हम जिक्र किसका करते हैं। हम जिक्र दो चीजों का करते हैं, हम जिक्र जो है वो तीन तीन का करते हैं, हम जिक्र चार का करते हैं, हम जिक्र पांच का करते हैं, हम जिक्र 100 चीजों का करते हैं, 100 हस्तियों का जिक्र करते हैं बैठ करके, जो है वो आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं और नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, और बहुत मतलब दीनदारी, ठीक है, दीनदार बैठ करके किसका जिक्र कर रहा होता है, आदम, नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा और नबी अलैहिस्सलाम, इन सब का जिक्र कर रहा होता है? नहीं, जिक्र किसका करना होता है, सिर्फ एक अल्लाह का, सिर्फ एक अल्लाह का जिक्र करना होता है, ठीक है ना। तो एक का जिक्र जब करते हैं तो उससे क्या मिलता है, यकसुई, ठीक है, और जब एक से ज्यादा का जिक्र शुरू कर देते हैं तो उससे क्या मिलता है, इंतशार, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस, इंतशार। और सुकून जो है वो किससे मिलता है, इंतशार से मिलता है कि यकसुई से मिलता है, जिक्र से मिलता है ना सुकून, ठीक है, तो जिक्र से सुकून मिलता है। और जिक्र कितनी चीजों का किया जाता है, सिर्फ एक, ठीक है, बल्कि हस्ती बोलना चाहिए क्योंकि अल्लाह की बात हो रही है, तो जिक्र कितनी हस्तियों का किया जाता है, सिर्फ एक। तो थोड़ा सा बहुत ही सिंपल मैथ है ये, सिंपल मैथमेटिक्स, जिक्र अल्लाह का किया जाता है, जिक्र से सुकून मिलता है, तो फिर सुकून किससे मिलता है, अल्लाह से मिलता है। अल्लाह कितने हैं, सिर्फ एक, अल्लाह कितने हैं, सिर्फ एक, बाकी हर कोई जो है ना वो एक से ज्यादा है, हर चीज एक से ज्यादा है, लेकिन अल्लाह सिर्फ एक है, ठीक है। तो सुकून जो है ना वो एक से मिलता है, सुकून एक से मिलता है, सुकून यकसुई से मिलता है, और जो यकसुई को रद्द कर देते हैं और इंतशार में फंसे रहते हैं उनको कभी भी सुकून नहीं मिल सकता, उनको कभी भी सुकून नहीं मिल सकता, ठीक है, तो वो हमेशा सुकून से महरूम रहते हैं। यानी जब सुकून कोई महरूम होगा तो फिर उस कैफियत को क्या कहते हैं, बेचैनी, राइट, बेचैनी कहते हैं ना इस कैफियत को। तो इसका मतलब यह है कि जो मुंतशिर रहेगा वो हमेशा बेचैन रहेगा, वो हमेशा बेचैन रहेगा, उसको कभी भी चैन नहीं मिल सकता, बेसुकून रहेगा, उसको कभी भी सुकून नहीं मिल सकता, ठीक है। तो जिक्र करता हुआ सोए, जिक्र अल्लाह का करे, ठीक है ना, जाहिर है किसी और का जिक्र कर भी नहीं सकते, जब अल्लाह का करेंगे तो फिर इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा, और इससे फिर जो है ना वो और भी फायदे होंगे, नींद भी आ जाएगी, ठीक है, और जब नींद आ जाएगी तो फिर आपकी फिजिकल बॉडी को भी सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जिक्र का फायदा यह है कि जब इंसान जिक्र करता है तो जिक्र में उसके ऊपर जो रहमतें नाजिल होती हैं उसकी वजह से इंसान के ऊपर हल्की सी एक नींद की कैफियत होती है, और यही नींद उसको गहरी नींद में आसानी से मुंतकिल कर देती है। अगर किसी को नींद का मसला हो तो उसको चाहिए कि लेटे और दुरूद शरीफ पढ़े, ठीक है, तो दुरूद शरीफ भी क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मद, दुरूद शरीफ में आप नबी अलैहिस्सलाम से बातें शुरू कर देते हैं ना, किससे बात कर रहे हैं दुरूद शरीफ पढ़ने में, अल्लाह, ठीक है, अल्लाहुम्मा, ओ अल्लाह, उर्दू में तर्जुमा कैसे करते हैं अल्लाहुम्मा का, ओ अल्लाह, ठीक है, तो दुरूद शरीफ को कोई समझ रहा है कि जी मैं नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा हूं, नहीं, आप नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं कर रहे, आप अल्लाह ही से बात कर रहे हैं, एक अल्लाह से बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक अल्लाह से कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर आप सलातो वसलाम, और اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ٹھیک ہے، تو اصل میں تو اللہ کا ذکر ہے درود شریف، لیکن اللہ سے تو نبی علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں. اچھا، تو اگر کسی کو نیند کا مسئلہ ہو تو اس کو چاہیے کہ لیٹے اور درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو وہاں پر کوئی کہے کہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہوں، بھائی گناہوں کو یاد جو کر رہا ہوں وہ تو ضمنی بات ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کر رہے ہیں نا، گناہوں سے کوئی کام کو تھوڑی کروا رہے ہیں، گناہوں سے دعا کو تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کا لب لباب کیا؟ اللہ. ہر چیز کا لب لباب کیا؟ اللہ. ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، تو اس کلمے کے پڑھنے سے اس کو نیند جلدی آ جاتی ہے. تو یہ کوئی جادو وادو نہیں ہے کہ طوطے کی طریقے سے کلمہ پڑھ رہے ہیں یا طوطے کی طریقے سے کچھ اور پڑھ رہے ہیں، بلکہ کہ بھائی مطلب جادو کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی نے بتا دیا کہ یہ بس یہ کلمہ، یہ جادوئی کلمہ ہے، اس کو اگر تم منہ سے ادا کر لو گے نا تو اس کا ایک ایفیکٹ پیدا ہو جائے گا اور پھر وہ گدھا بن جائے گا مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، تو وہ جادو کا کلمہ پڑھا اور پڑھ کے پھونک دیا تو بندہ گدھا بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے مطلب. ٹھیک ہے نا، ذکر کا مطلب جو ہے نا وہ جادو کا کلمہ نہیں ہوتا جس کا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ذکر کا مطلب تو ہوتا ہے کہ آپ یاد کر رہے ہیں کسی کو، آپ کانشیسلی کسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، کسی کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جادو کے کلمے کے چکر بہت ہو چکے ہیں، ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، مل گیا بھی بہت ثواب، اب اللہ کب یاد آئے گا؟ ثواب ملنے کے اوپر جو ہے وہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ ساری زندگی غائب رہتا ہے ہماری زندگی سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہم انکار نہیں کر رہے کہ ثواب نہیں ملتا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ثواب ملتا، بے شک ملتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کب آئے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف دھیان کب بنے گا؟ قبر میں جا کے بنے گا؟ نہیں، قبر میں بھائی، قبر سے پہلے بنانا ہے نا یار، تاکہ قبر اچھی ہو جائے. پتا چلا قبر میں پہنچ کر کے پھر وہ اللہ کی طرف دھیان بنانے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا، کیونکہ ساری زندگی جو ہے وہ بدون اللہ کی گزر گئی، تو پھر قبر میں تو پٹائی ہو رہی ہوگی اس کے بعد. ٹھیک ہے نا، قبر میں تو پٹائی ہو رہی ہوگی، تو جب پٹائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد کہ تھوڑی کوئی فائدہ ہوتا ہے دھیان ویان بنانے کا. تو دھیان تو اس دنیا میں بنانا ہے نا اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو پھر جا کے قبر میں بھی وہ دھیان بنا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اور اس دنیا میں دھیان بنانے کی بجائے جو ہے وہ دوسرے چکروں میں پڑے رہے اور سمجھ، ہاں جی ثواب تو مل رہا ہے نا، بس سائیڈ میں سائیڈ میں میرا جو ہے نا وہ اکاؤنٹ تو فل ہو رہا ہے نا، تو مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کو یاد کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی، اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ تو میرا فل فل ہو رہا ہے، جیسے کسی کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آئے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اب کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم بزنس میں ذرا اپنا جو بزنس کر رہے ہو نا، تو بزنس میں ذرا توجہ تو کرو نا، ذرا اپنی بزنس کی طرف دھیان تو کرو نا، کچھ جو بزنس کی طرف جو ہے وہ کچھ سوچو تو ذرا نا اپنے بزنس کو بہتر بنانے کے لیے. تو وہ جواب دے، مجھے کیا ضرورت ہے سوچنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے بزنس کے اوپر جو ہے وہ توجہ کرنے کی، میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے آئے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، دنیاوی بزنس تک تو یہ بات آتی ہے کہ جب میرا مقصود پیسے ہیں، تو پیسے جب آ رہے ہیں اکاؤنٹ کے اندر تو مجھے کیا ضرورت ہے بزنس کے اوپر توجہ کرنے کی، کیونکہ بزنس تو میرا مقصود نہیں ہے نا. وہاں پر تو یہ جواب بالکل ٹھیک ہے کہ میرا مقصود جو ہے وہ بزنس نہیں ہے، میرا مقصود پیسے ہیں جو میرے بینک اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، بزنس سے مجھے کیا لینا دینا، ایز لانگ ایز مجھے پیسے مل رہے ہیں. لیکن کیا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ بھی ہے؟ کیا یہی معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تو ہمارا مقصود نہیں ہے نا؟ ہمارے نام اعمال کے اندر ثواب والے پیسے تو آئے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کی طرف توجہ کرنے کی، کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کو کے بارے میں سنجیدہ ہونے کی؟ اس وقت ہمارا یہ حال بنا ہوا ہے. آج کا جو دیندار ہے نا، آج کا دیندار ہم اور آپ، हमारा ये हाल बना हुआ है। ठीक है, तो जब ये हाल बन जाए तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा ना इसके लिए, कि भाई ये जो सवाब के जो तमाशे आपने बनाए हुए हैं, ये बहुत बड़ी, यानी बहुत बड़ा मसला है। ये इनकार नहीं कर रहे, ठीक है, कि भाई हदीस का इनकार करते, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि हम कह रहे हैं नहीं 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 ऐसा नहीं है, नहीं हम हरगिज, भाई हमारा अपना ईमान खतरे में पड़ जाएगा, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक शरीयत का उसूल भी है ना, कि जिस वक्त कोई जायज चीज भी, कोई बात जो है वो आपके लिए नुकसान का सबब बन रही हो, तो उसको भी जो है वो छोड़ना पड़ता है, या कम से कम उसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है। जब आप एक बहुत बड़े नुकसान के मुर्तकिब हो रहे हो, एक बहुत बड़े नुकसान के जो है ना वो के अंदर अपने आप को दाखिल कर रहे हो, तो समथिंग्स नीड टू बी मूव्ड अराउंड, और सोचना पड़ता है कि भाई क्या वजह है कि हम जो है वो इतने बड़े नुकसान की तरफ जा रहे हैं, क्या वजह बन रही है इसकी ना। तो फिर वो होता है कि भाई किसी ने आपको कंफ्यूज किया हुआ है, किसी ने आपको गलत फहमी में मुब्तला किया हुआ है ऐसा। ठीक है, तो अल्लाह के ऊपर फोकस जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि जैसे बिजनेस के ऊपर फोकस, कि भाई असल मकसूद तो बिजनेस नहीं है, असल मकसूद तो पैसे आना है। तो यही मामला अल्लाह के साथ भी है, कि असल मकसूद तो अल्लाह नहीं है, असल मकसूद तो जो है वो सवाब का जो है वो हमारे नामे अमाल के अकाउंट में आना है। ठीक है, ये हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ही फोकस, अल्लाह ही मकसूद है। ठीक है, इसको तौहीद कहते हैं। ठीक है, और यही तौहीद असल दीन यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही तौहीद है और यही दीन की इब्तिदा है। ठीक है, अच्छा, तो कलमा पढ़े तो कलमे के पढ़ने से नींद आ जाती है, तो भाई वो जब करेंगे तो फिर नींद खाली नहीं आती, बहुत खाली और भी चीजें आ जाती हैं, लेकिन उन चीजों के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। बहरहाल, तो सोने से पहले की जो दुआएं हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मांगी, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी वो दुआएं सिखाएं, और सोने से पहले हम दुआएं मांग कर सोया करें, और जब आंख खुले तो जो जागने की दुआ है वो भी पढ़ा करें। ठीक है, सोने की सबसे शॉर्ट सिंपलेस्ट दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मे का अमूतु व अहया, ए अल्लाह आपके नाम के साथ, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा मैं आपके नाम के साथ मरता हूं और जीता हूं। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी छोटी सी दुआ है ये। अगर हम किसी दुनिया में किसी शख्स को कहते हैं ना, मैं तो तुम्हारे नाम पे जीता और मरता हूं, मैं तो तुम्हारे नाम पे जीता और मरता हूं, ठीक है, और उसको प्रूव भी करवा दें कि हाँ मैं ये दिल से कह रहा हूं ये वाली बात तुम्हारे लिए, उसको पता चल जाए कि वाकई आप दिल से ये बात सच सच बोल रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे नाम पे मरता और जीता हूं, अब सोचें उसके दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत आएगी, कितनी कदर आएगी। ठीक है, तो दुनिया वाले के साथ तो मसला ये है कि हम अपना दिल खोल के उसको दिखा भी नहीं सकते, और वो जो है ना वो हमारा दिल देख भी नहीं सकता कि वाकई हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अल्लाह के साथ तो ऐसा नहीं है ना, हम अल्लाह को कह रहे हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अगर हम वाकई दिल से ये बात कह दें तो तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला की क्या मोहब्बत हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर कितना एहसान, अल्लाह ताला ने उनके वास्ते से, असल में एहसान तो अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह ने उनके वास्ते से हमें इतना छोटे से जुमले के अंदर अपनी मोहब्बत का मुस्तहिक बनने का तरीका सिखला दिया, अल्लाहुम्मा बिस्मे का अमूद हुआ है। ठीक है, लेकिन ये तो सबसे छोटी दुआ है, और फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने और भी कितनी प्यारी प्यारी दुआएं मांगी, क्या जबरदस्त दुआ है, एक सोने की है, दूसरी है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अस्लम तो नफसी इलैका, शुरू अल्लाह के नाम से, कि ओ अल्लाह मैंने अपनी जान को ना आपके सामने झुका दिया, अल्लाहुम्मा अस्लम तो नफसी इलैका, मैंने सुपुर्द कर दिया अपने नफ्स को आपके हवाले कर दिया, वो वज्जहतु वज्ही इलैका, और अपने रुख को, अपने चेहरे को आपकी तरफ कर दिया, वफवक्तु अमरी इलैका, और अपने तमाम उमूर को जो है ना वो आपके के सुपुर्द कर दिया, अपने सारे मामलात को आपके सुपुर्द कर दिया। वो अलजह तो वहरी इलैक, फेर दिया अपनी पुश्त को भी आपकी तरफ, लेकिन पुश आपकी तरफ से फेर दिया, ठीक है, यानी पुश्त नहीं की मैंने आपकी तरफ, जहां तक मुझे तर्जुमा तो देख नहीं सका था, लेकिन पुश्त नहीं करी मैंने आपकी तरफ, ठीक है। रहबतन व रगबतन इलैका, आपके खौफ के साथ यानी आपकी नाराजगी के खौफ के साथ और आपकी तरफ रगबत करते हुए, रहबतन व रगबतन इलैका, ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैका, यानी ना आपसे जो है वो कहीं भाग सकता हूं, ना मैं कहीं छुप सकता हूं, सिवाय आप ही की तरफ, सिर्फ आप ही की तरफ। आमन तो बेकिताब का लजी अनजलता, मैं ईमान लाता हूं उस किताब के ऊपर जो आपने नाजिल फरमाई, वह नबी कल अरसलता, और मैं ईमान लाता हूं उन नबी के ऊपर जिनको के आपने भेजा। ये सोने की दुआ है, क्या बेहतरीन दुआ है। तो अगर बहुत ज्यादा नींद ना आ रही हो तो फिर ये वाली दुआ भी पढ़ सकते हैं, बहुत आसान सी है, इसको याद करना बस अल्लाह ताला चढ़ा देता है जुबान के ऊपर, तो याद करने की कोशिश करता है। तो ये सोने की दुआएं हो गई, उठने की दुआ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लजी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। फिर होता है बच्चे जो है वो रात को डर जाते हैं वगैरह, तो इस तरह की चीजें जो है वो फिर मुआवजतैन पढ़ने का भी, ये भी हदीस से मिलता है कि रात को सोने पहले कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों पढ़ लिया, बेशक शुरू में जो है वो दुरूद शरीफ आखिर में दुरूद शरीफ, इस तरह से मुआवजतैन पढ़ लिया। पूरा हिसार भी माशाल्लाह कुछ लोग पढ़ते हैं अकायदगी के साथ के दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर उसके बाद सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ ऑफ कोर्स, फिर बिस्मिल्लाह के साथ आयतुल कुर्सी और फिर चारों कुल, तो ये और आखिर में कोर्स दुरूद शरीफ। तो ये पूरा जो है ना एक हिफाजती हिसार, हमारे मशाइख ने हिफाजती हिसार का तरीका बताया कि इस तरीके से दुरूद शरीफ शुरू में और दुरूद शरीफ आखिर में सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी और चारों कुल ये पढ़ ले, और उसके बाद फिर एक इमेजिनरी जो है वो उंगली से एक दायरा बना ले अपने तमाम घर के गिर्द, तो ये एक हिफाजती हिसार और अल्लाह ताला के कलमात हैं ये, ठीक है, तो अल्लाह के कलमात की हिफाजत में इंसान आ जाता है। आऊधु बिकलिमात अल्लाह तामात मिन शर्र मा खलक, ठीक है, यह हदीस की दुआ भी है कि अल्लाह के कलमात से जो है ना मैं पनाह मांगता हूँ, क्योंकि अल्लाह के जो कलमात हैं वो अल्लाह ताला की सिफत है ना, तो अल्लाह के कलमात से मांगने का ये मतलब नहीं है कोई मखलूक से जो है वो हम पनाह मांग रहे हैं, पनाह की दुआ कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ही से हम पनाह की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के कलमात को जो है वो यानी उनका वसीला बना करके, ठीक है, लेकिन मांग तो अल्लाह ही से रहे हैं, कलमात से नहीं मांग रहे अल्लाह, और क्योंकि वो अल्लाह के कलमात अल्लाह की सिफत है तो अल्लाह ही से मांग रहे हैं, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने मांग के बताया, तो फिर और हमारे लिए क्या इसके अंदर सोचने की जरूरत रह जाती है। तो सोने से पहले की दुआएं वगैरह पढ़ लेना, तो ये आदाब है सोने के, ठीक है, फिजिकल आदाब भी हो गए और दीनी आदाब स्पिरिचुअल आदाब भी हो गए। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि साइंस की रिसर्च ने यह साबित किया है कि जो बंदा अच्छी नींद नहीं सो सकता वो बंदा अच्छी जिंदगी भी नहीं गुजार सकता, ठीक है, यानी कम से कम हेल्दी जिंदगी तो वो नहीं गुजार सकता, ठीक है। इंसान की जिंदगी का तकरीबन तीसरा हिस्सा सोने में गुजर जाता है, चुनाचे जिसकी जिंदगी 60 साल है वो जिंदगी के तकरीबन 20 साल सोने में गुजार देता है, ठीक है। तो ये एक एक फैक्ट, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है कि आपकी यानी तीसरा हिस्सा 1/3 ऑफ योर लाइफ इज स्पेंट इन स्लीपिंग, ठीक है। तो अब ये तो आपने 1/3 यानी एक तो ये फिजिकल एक फैक्ट हो गया ना, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गई है, लेकिन क्या ये बस मैथमेटिक्स ही है? नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक पिछली पिछले जुमले के साथ है, ठीक है। यानी ये दो बजाहिर लगता है कि दो डिसजॉइंट जुमले हैं। पहला जुमला उसका अलग मकसद था कि जो बंदा अच्छी नींद नहीं सो सकता वो बंदा अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकता, और दूसरा जुमला जो है ये गोया कि एक मैथमेटिकल फैक्ट है। उन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? जी चले, आपसे पूछते हैं, थोड़ी सी क्लास से इंटरेक्शन भी होनी चाहिए ना। तो आप ये बताएं कि इन दोनों जुमलों का आपस में एक रब्त क्या है? बेरब्त जुमले हैं ये, या कोई रब्त है इन दोनों के दोनों? जी तो बताएं। वैसे तो हमने जो बयान के अंदर पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में भी जो चीजें पढ़ी थी ना, तो उन सब से इसका रब्त है। तो क्या कनेक्शन है दोनों के? जो बंदा अच्छी नींद नहीं सो सकता वो बंदा अच्छी जिंदगी भी नहीं गुजार सकता। इंसान जिंदगी का तकरीबन तीसरा हिस्सा सोने में गुजर जाता है, चुनाची जिसकी जिंदगी 60 साल है वो जिंदगी का तकरीबन 20 साल सोने में गुजार देता है, ठीक है। तो 20 साल, 60 साल वाला बंदा 20 साल सोने में गुजार देता है, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये हर बंदे के साथ है, ठीक है। यानी हर बंदे ने 1/3 ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ सोने में गुजारनी है, ठीक है ना। तो 2/3 ऑफ द लाइफ किस में गुजारनी है? फिर जागने में गुजारनी है, ठीक है। 1/3 तो सबने सोना है। अच्छा, पिछले क्लासेस से इसका क्या रब्ता है? कि पीछे हम ये बात इसी बयान के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर आप नहीं सो रहे हो ना, यानी आप अपने आप को पुश करके जगा रहे हो, तो फिर आपका स्लीप डेट पाइल अप होता रहता है। स्लीप डेट यानी सोने का कर्जा, जो कि फिर एक वक्त आपको उतारना पड़ जाता है, ठीक है। तो क्या मतलब कि अगर आप अपने आप को नहीं सोने दे रहे हैं तो फिर भी आपको बिलाखिर जाकर के सोना ही पड़ता है, ठीक है। तो सोना तो पड़ेगा, चाहे आप मर्जी से सोएं, चाहे आप यानी बिला मर्जी को सोएं, ठीक है, मजबूरन सोएं। तो फिर फायदा क्या? मकसद यह है कि अगर आप तरीके से नहीं सोएंगे, ठीक है, यानी आप अल्लाह के निजाम के मुताबिक नहीं सोएंगे, तो सोना तो आपको फिर भी पड़ेगा। ये नहीं है कि आप बगैर सोए चल जाएंगे, सोना तो फिर भी पड़ेगा, और उतना ही सोना पड़ेगा जितना कि हर बंदा सोता है, यानी 20% ऑफ योर होल लाइफ। 20% नहीं, 25%, सॉरी 30% ना, ठीक है। सोना तो फिर भी पड़ेगा, 33% एक्चुअली एग्जैक्टली बनता है। तो सोना तो फिर भी पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा कि जो जागने का टाइम है वो आपका खराब हो जाएगा, वो आपका प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो आपका हेल्दी नहीं होगा, ठीक है, बल्कि वो अनहेल्दी होगा, वो अनप्रोडक्टिव होगा, ठीक है ना, या लेस प्रोडक्टिव तो कम से कम होगा। लेस प्रोडक्टिव का मतलब क्या है? कि अगर आप उसके अंदर यानी 10 गुना ज्यादा काम कर सकते थे, क्योंकि अल्लाह ने आपको सलाहियतें दे के पैदा किया था, एक्स्ट्रा सलाहियत दे के पैदा किया था, आप आम आदमी के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा अच्छा काम कर सकते थे, तो लेस प्रोडक्टिव होने का मतलब ये होगा कि आप 10 गुना अच्छा काम करने के बजाय सिर्फ 5 गुना अच्छा काम कर पा रहे होंगे। तो आपकी जो सलाहियतें हैं वो 5 गुना जो है वो जाया हो रही होंगी और 5 गुना जो है वो इस्तेमाल हो रही होगी, यानी लेस प्रोडक्टिव की ये मिसाल है। ठीक है, तो ये है रब्त इन दोनों बातों का। ठीक है, तो ये बेरब बातें नहीं है कि बस एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिख करके छोड़ दिए इधर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा था उन्होंने कि असल अल्लाह के उसूलों को तोड़कर आप कभी कामयाब जिंदगी, तो आपकी जिंदगी जो है ना, जो जागने वाली जिंदगी होगी ना, वो अच्छी नहीं होगी बल्कि वो खराब। ठीक है, अच्छा, दिन के काम में कुछ देर नैप करे यानी आराम करे। तो फरमाते हैं कि देखा ये गया है कि जो लोग सारा दिन काम करते हैं, अगर वो दिन में 10 मिनट की ब्रेक ले लें और इस 10 मिनट में थोड़ा सा नैप ले लें, तो उनको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। चुनाचे इस पर साइंस ने बहुत रिसर्च की कि जो लोग दोपहर को थोड़ा आराम कर लेते हैं, ये फिजिकली जिस्मानी तौर पर भी बहुत अच्छा होता है। चुनाचे बाज मुल्क ऐसे हैं जहां पर दफ्तर के टाइम में भी 10-15 मिनट का नैप लेने के लिए कहा जाता है। जापान में बहुत ज्यादा इसकी पाबंदी की जाती है। ऑफिस के अंदर नैप के लिए बकायदा उन्होंने टर्मिनल्स बनाए हुए हैं, स्टेशंस बनाए हुए हैं, और जो है ना वो लोगों को नैप दिलवाई जाती है। ठीक है, कहा जाता है नहीं जी इसको काम नहीं करना है आपने दफ्तर का। ठीक है, तो वो बिजनेस रीजंस की वजह से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि उन जो लोग हैं वो सुबह से जागे हुए हैं, यानी फजर के वक्त से जागे हुए, तो अब जो है ना ये उनका फेजिंग आउट का टाइम हो चुका है। अब भी अगर ये काम करते रहेंगे ना, तो ये या तो कोई गलती कर जाएंगे जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, या ये कि जितना ये फायदा कर सकते हैं वो उतना कर नहीं पाएंगे। बेहतर है कि भाई आप जा करके सो जाओ। ठीक है, तो अकलमंद लोग हैं कि उन्होंने इस बात को समझ लिया, लेकिन हम जो है वो एक तो सुबह को जागते नहीं है, सो जाते हैं सुबह के वक्त। ठीक है, और फिर जो है वो देर से उठ करके जो है वो काम करना शुरू करते हैं, और ना जाने और क्या क्या मसले वो सब आप जानती हैं कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये नैप जो है ना, इसका ताल्लुक जो है फिर सुबह से जो काम कर रहा हो, फजर के वक्त से जो काम कर रहा हो ना, वो फिर उसको ये नैप लेनी पड़ती है, वो फंक्शन भी नहीं कर सकता। तो फरमाते हैं कि खाने और सोने में 2 घंटे का वक्फा हो, तो जो आदमी चाहे कि हाँ, जो आदमी चाहे कि उसकी नींद अच्छी हो, उसको चाहिए कि से 2 घंटे पहले खाने को बंद कर दे। ठीक है, खाने को बंद कर दे का मतलब यह कि 2 घंटे पहले खाना मुकम्मल कर ले, खा ले। ठीक है, ये नहीं कि मुस्तकिल खा रहा था और बिलाखिर जो है वो 2 घंटा पहले उसके खाने को बंद कर दिया, बल्कि डिनर जो है ना वो 2 घंटा पहले खत्म कर ले, क्योंकि खाना खाते ही फौरन सोएगा तो इससे स्लीप डिसऑर्डर, बदख्वाबी के इम्कान बढ़ जाएंगे। मसलन अगर 10 बजे सोने की आदत है, तो 8 बजे अपना आखिरी खाना लेने के बाद भी फिर कुछ नहीं खाना चाहिए। 2 घंटे मिल जाएं ताकि इंसान का जिस्म उस खाने को हजम कर ले और फिर इंसान अच्छी नींद सो सके। ठीक है, अब इसकी क्या एनाटॉमी है, ये डॉक्टर हजरात ज्यादा बेहतर जानते हैं कि पेट के अंदर चला जाता है तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फंक्शन कर रहा होता है, तो उस वक्त जो है वो नींद इतनी अच्छी नहीं आ रही होती है, वगैरह वगैरह, पता नहीं, मैं उसकी तहकीक में नहीं जा सका, लेकिन हजरत ने तहकीक करके ये बात देखी होगी, उस पर एतमाद है। अच्छा, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप के लिए, वैसे तो खाने के बाद नींद आ जाती है, ठीक है, बल्कि कैलूला की भी एक एनाटॉमी यही है कि जब दोपहर का खाना आप खा रहे हो, खा चुके होते हैं ना, तो और ये भी हमने कुदरतन अपने हजरत के बयान में, कोई मेडिकल रिसर्च नहीं पड़ी थी, हजरत जी के बयान के अंदर ये सुना, बहुत पहले की बात है, रमजान मुबारक के जिस्मानी फवायद के ऊपर हजरत ने बयान किया था। तो जब इंसान खाना खाता है तो उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाती है उसके स्टमक की तरफ, क्योंकि स्टमक को जो है ना वो ज्यादा फंक्शन करने की जरूरत पड़ती है, तो उसको ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। भाई जिस इंजन को, जिस मोटर को आपने रन करना है, तो आपको फ्यूल जो है ना वो उधर चाहिए होगा ना। ठीक है, तो बिल्कुल जिस्म में अल्लाह ताला ने यही निजाम बनाया है, तो फ्यूल क्या है, ईंधन क्या है, वो खून है। ठीक है, तो अब जब पेट को ज्यादा फंक्शन करना है, क्योंकि खाने को उसने डाइजेस्ट करना है, यानी प्रेस करना है ना, यानी क्या क्या काम हो रहे होते हैं उसके अंदर, तो वो जो खून है ना फिर बॉडी के दूसरे हिस्सों से भी इस तरफ डायरेक्ट होना शुरू हो जाता है, हत्ता कि ब्रेन से भी। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना वो खाना खाने के बाद फिर ब्रेन यानी थोड़ा सा इंसान को गुनूदगी की भी कैफियत फील होती है, क्योंकि ब्रेन से जो है ना वो ब्लड थोड़ा सा कम हो चुका होता है स्टमक की तरफ रिडायरेक्शन की वजह से, तो उस वक्त जो है वो इंसान नैप ले ले तो ये ज्यादा बेहतर वक्त का इस्तेमाल है, रादर देन कि आप इतनी आधे दिमाग के साथ जो है ना वो काम करने की कोशिश कर रहे हो। बहरहाल ये नैप का थोड़ी तफसील है। तो उसी तरह से रात के वक्त जो है वो क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो लगा तो होता है आपके स्टमक की तरफ, सॉरी आपका ब्लड जो होता है वो तो स्टमक की तरफ मुतवज्जो हो जाता है क्योंकि आपने अभी डिनर भी खाया है, लेकिन तो नींद तो आ जाती है लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है ना वो नहीं आ रही होती उस वक्त, तो उसके लिए जो है ना वो फरमाते हैं कि आप डिनर कम अज कम 2 घंटा पहले सोने से पहले चाय ना पिए। बाज लोगों को रात को चाय पीने की आदत होती है, सोने से 2 घंटे पहले चाय का पीना नुकसानदेह है। बाज लोग कहते हैं कि हमें तो नींद ही चाय पीने से आती है, ये बात साइंस के खिलाफ है। साइंस का मतलब क्या है, ये बात जो है ना वो जो ऑब्जर्वेशंस की गई हैं उनके खिलाफ है। तो ऑब्जर्वेशंस कहती हैं, साइंस कहती है, साइंस गोया कि ना कोई वो बुढ़िया सी है या कोई बहुत ही कोई कोई इंसान है, इस तरह से साइंस को नहीं देखना चाहिए बल्कि ऑब्जर्वेशन के पानी में ही साइंस को समझना चाहिए। तो ह्यूम ये जो लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशंस कहें या क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस कहें, ठीक है, तो वो मुशाहिदात कहते हैं कि चाय में कैफीन होती है और कैफीन से नींद जरूर डिस्टर्ब होती है। तो कैफीन जो है ना वो इंसान के बदन के अंदर जो है ना वो कुछ चीजें ट्रिगर कर देती है कि जिसकी वजह से जो है ना वो फिर यानी हॉर्मोन्स फायर अप हो जाते हैं, तो अब जो है ना वो सुकून नहीं होता बल्कि बेसुकूनी होती है। इसी वजह से जब से हमने इस बात को समझा तो खुद तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बच्चों को चाय पिलाने का रुझान ही नहीं है, लेकिन फिर जिन लोगों को देखते हैं कि भाई वो छोटे छोटे बच्चों को जो है ना वो चाय या तो बाकायदा पिलाते हैं या चटाते हैं, ठीक है, तो वो बिस्किट में डुबो करके चाय दे रहे हैं, तो भाई वो आपका बच्चा फिर उसके बाद सोता नहीं है तो आपको होता है क्यों नहीं सो रहा, भाई चाय जो है वो आप उसको पिला रहे हैं, बिस्किट में जो है वो बिस्किट डाल करके चाय पिला रहे हैं आप उसको, ठीक है, तो आप क्यों करते हैं इस तरीके से ना, बच्चों को कैफीन ना दिया करें यार, कैफीन चाय में भी होती है चॉकलेट के अंदर भी होती है बाय द वे, लेकिन चाय में कैफीन मशहूर है ज्यादा। अगर नींद डिस्टर्ब ना भी हो तो उसकी क्वालिटी जरूर डिस्टर्ब होती है, यानी अगर आपको नींद आ भी जाती है ना तो भी वो क्वालिटी वाली नींद नहीं होती है, इसलिए रात को सोने से 2 घंटा पहले चाय नहीं पीनी चाहिए। कमरे को रात से ठंडा रखें, इंसान जब सोए तो उसको चाहिए कि अच्छी नींद के लिए कमरे को इतना ठंडा रखें कि जिससे नींद अच्छी हो जाए। 21 डिग्री सेंटीग्रेड इंसान की नींद के लिए बेहतरीन टेम्परेचर है, इससे ज्यादा हो तो भी नींद कम होती है और इससे कम हो तो भी नींद कम होती है। बाज लोगों ने तो 18 डिग्री और 19 डिग्री पर एयर कंडीशनर को रखा हुआ होता है और उसको कोल्ड स्टोरेज बनाया हुआ होता है, ठीक है, कमरे में इतनी ज्यादा ठंडक होती है तो कोल्ड स्टोरेज जैसा लगता है, तो आदर जी को बहुत ज्यादा ठंडक लगती थी, तो इस वजह से कम 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 के ऊपर वो ज्यादा फरमाते थे। और बाकी ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है तो अपनी तरफ से नहीं लिखाई है, अपनी तरफ से नहीं बनाया। तो टेम्परेचर का भी असर होता है, कैफीन का भी असर होता है, खाने का भी असर होता है सोने की क्वालिटी के ऊपर। सोने से पहले स्क्रीन का कोई काम ना करें, साइंस ने साबित किया है कि जो लोग अच्छी नींद लेना चाहते हैं उनको चाहिए कि सोने से 2 घंटा पहले स्क्रीन का बिल्कुल कोई काम ना करें, ना कंप्यूटर पे काम करें ना टीवी देखें, कोई स्क्रीन की एक्टिविटी होनी ही नहीं चाहिए, तब उनको अच्छी नींद आएगी। तो स्क्रीन जो है ना ये जो एलईडी स्क्रीन होती है जो कि आपके लैपटॉप में होती है कंप्यूटर्स में अब होती है, पहले एलसीडी होती थी उसका शायद कम इफेक्ट होता था नेगेटिव, लेकिन एलईडी जब से आई है ना जो कि आपके कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के अंदर होती है तो उसका जो है ना फिर इंसान के सोने के ऊपर ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। और फिर ये एलईडी स्क्रीन जो है वो फिर मजीद इसके अंदर उन्होंने और एडवांसमेंट्स कर करके जो है वो उसको छोटे से फोन के अंदर जो जब से डाला है, और फोन जो है वो आपके जिसम से और भी ज्यादा करीब होता है। लैपटॉप तो फिर थोड़ा सा दूर होता है, फोन तो और भी ज्यादा करीब होता है, और फोन फिर हर जगह साथ होता है। लैपटॉप तो आप हर जगह साथ ले लेकर के नहीं फिर सकते, हत्ता के लेट करके आप लैपटॉप पे काम नहीं कर सकते, लेकिन लेट करके फोन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो फिर उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद आजकल जो है वो जो इवन कमरों के अंदर लाइटिंग भी है वो भी अब एलईडी लाइटिंग होती है, ठीक है। यानी आप किस 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 चीज का रोना रो और किस किस चीज को जो है ना वो अपनी जिंदगी से दूर करें, यही यार मामला है ना। पहले तो ससुराल का रोना रोती थी खवातीन, ससुराल से भागना जो है वो मुमकिन नहीं है, और अब जो है वो मतलब हर बंदा ही किस किस चीज से भागे है। तो भाई अब बस यही है कि अल्लाह ताला से रुजू करें, और क्या रास्ता है इसका, ठीक है। तो और जो चीज कर सकते हैं वो कर लें। अब काम भी ऐसा कि बस मुस्तकिल का हमारा तो काम भी जो है वो 24 घंटे का व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। लोग अपने बड़े से बड़े मसाइल लेकर के भी व्हाट्सएप के ऊपर आए हुए होते हैं, छोटे से छोटे मसाइल लेकर के व्हाट्सएप के ऊपर आए हुए होते हैं, ठीक है। कि मैं फलानी चीज खरीदूं कि ना खरीदूं, मेरा बच्चा फलानी चीज खरीदे कि ना खरीदे, वो भी हमसे पूछो भाई आप खुद क्यों नहीं डिसाइड कर सकते यार, खुद क्यों नहीं सीखते कि भाई क्या मेरे लिए नुकसानदेह है, क्या मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह है, और फिर उसके ऊपर अमल करें। तो आप यानी ये तो तरीका नहीं होता ना, राबता शेख का ये तरीका तो नहीं होता, लेकिन अब क्या करें, मना कर दें तो फिर वो मना कर देंगे तो ये होगा कि जो जो वाकई मशवरा करने के काबिल चीजें थी उनमें भी मशवरा नहीं करेंगे, नहीं जी हजरत ने मना कर दिया था तो इस वजह से हम पूछते ही नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं देखते कि आप किस चीज के लिए हजरत को तंग किए चले जा रहे थे, तो उस वजह से मना किया था, ठीक है। तो अब हर बंदा नया बंदा, ठीक है ना, वो हर बंदा नए मसले लेकर के आ रहा है, तो अब क्या, तो लेकिन अब हर बंदा तो इस तरह से नहीं, उसका हर बंदे की जॉब तो ऐसी नहीं होती ना कि वो जो है वो लोगों के मसले हल करने के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है। बाकी तो फिर हम वो यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने के लिए फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जो है वो इधर उधर की जो है वो इंतशार के सबब असबाब जो है वो हमने इख्तियार किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम फोन देख रहे होते हैं, ठीक है। तो बाकी लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं होगा। तो सोने से पहले स्क्रीन का कोई काम नहीं कर, सोने से पहले स्ट्रेस खत्म करके सोए, ठीक है। स्ट्रेस खत्म करने का मतलब हम पीछे बड़ी तफसील से क्लास की शुरू में बात कर चुके हैं कि स्ट्रेस जो है ना वो इंतशार की वजह से होता है, तो भाई इंतशार खत्म करें, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। बहरहाल हजरत ने फरमाया कि साइंस ने यह भी साबित किया है कि जो बंदा स्ट्रेस की कंडीशन में सोता है तो उसको स्लीप डिसऑर्डर यानी बदख्वाबी का मसला ज्यादा होता है। इसीलिए जो बंदा सो रहा है उसको चाहिए कि अपने जहन से सारी टेंशन खत्म करके सोए, ठीक है। तो अब टेंशन का कोई स्विच तो होता नहीं है कि इधर आपने स्विच ऑफ किया और वो टेंशन खत्म हो गई, ठीक है। शरीयत ने क्या खूबसूरत तालीम दी है कि इंसान सोने से पहले अपने दिल से कीने को खत्म कर दे, ठीक है। क्योंकि मसला एक बहुत बड़ा, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इज कीना। ये जो कीने को खत्म करने की सुन्नत है यानी हर किसी को माफ कर देना, ये इंसान को स्लीप डिसऑर्डर से बचा लेती है, ठीक है। तो वो कीना क्यों होता है, क्योंकि इंसानों के बारे में सोचे चले जा रहे होते हैं हर वक्त, किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ये क्यों किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, वो कैसा है, वो कैसी है, वो ऐसी है, वो वैसी है, ठीक है। तो ये जो दूसरों के बारे में सोचते चले जा रहे हैं कंप्लेनिंग तौर पे, तो जो है वो कीना पैदा हो जाता है। तो सीना बेकीना, इससे जो है वो आप बहुत बड़े बड़े मसलों से निकल आएंगे, इनमें से के एक स्लीप ऑर्डर भी है, डिसऑर्डर भी है। और दूसरा ये कि कीना नहीं भी तो भी खाम खा में जो है वो बस चीजों के बारे में सोचे चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए यकसुई यानी एक अल्लाह, ठीक है। तो वो तो कर शुरू में बहुत तफसील से बात हो चुकी है कि एक की तरफ जब भी मुतवज होंगे तब सुकून मिलेगा, और जहां इंतशार में इन्वॉल्व होंगे वहां पे बेसुकूनी रहेगी। अच्छा, फिर उसके बाद नींद का कुदरती प्रोग्राम जो फरमाया ना, तो ये फिर हमें अगली ही क्लास में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो क्लास का टाइम ओवर हो चुका है और आगे काफी सारी चीजें हैं अभी बाकी इसके अंदर। किसी ने कोई और चीज लिखी हो तो हम देख लेते हैं कि मैसेजेस आए हुए तो हैं कि हजरत दिन में सोते हैं तो रात में लेट से नींद आती है और 10 मिनट का सोना पॉसिबल नहीं नहीं है, बस लेट सकते हैं। जो दोपहर का जो कैलूला है ना, वो 20 मिनट से 30 मिनट, ठीक है, तो वो सिर्फ 10 मिनट जरूरी नहीं है, 10 से लेकर के 30 मिनट तक के अंदर किसी तरह से उठ जाए, ठीक है, और रात को ही नींद लेने की कोशिश करें। देखिए आहिस्ता आहिस्ता, बस इंच 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 बढ़ने की कोशिश करें इसके अंदर, क्योंकि जो लोग सो रहे हैं ना जा रात को जल्दी, तो वो तो यानी मजबूरी की वजह से रात को जल्दी सोते हैं, क्योंकि सुबह को जाना उनके पास सोने का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, तो उनको तो रात को वो तो सो ही जाते हैं रात को, चाहे सुबह को स्कूल जाना हो, चाहे सुबह को अगर कोई दफ्तर कोई ऐसा काम हो, वो तो रात को सोते हैं। मसला सारा का सारा किन लोगों के साथ है कि जिनको के सुबह की टेंशन नहीं है, दफ्तर भी लेट पहुंच सकते हैं, होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, ठीक है, मैं ये कह रहा कि होम स्कूलिंग करवा सकते हैं तो ना करवाएं, स्कूल भेजना शुरू कर दें ताकि रात को जल्दी सो सके, ये हरगिज हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन होम स्कूलिंग की एक नेगेटिव चीज मिलती है वो ये कि सुबह स्कूल का टाइम नहीं होता, ठीक है, तो अब जो है ना वो रात को सोने की भी टेंशन नहीं होती। तो अब ऐसे लोगों के लिए जो है ना फिर क्या क्या करें, फिर भाई वो फिर कोशिश करें आहिस्ता 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 जितना कर सकते हैं उतना तो करें। एलईडी लाइट्स अब तो घर में लाइटिंग के लिए यूज हो रही है जी, दज्जाल आ रहा है ना, बस करीब करीब पहुंच रहा है, बस दज्जाल की तैयारियां हो रही हैं, एलईडी लाइट्स भी उसी की तरफ एक कदम ही है, चाहे कोई माने या ना माने, तो ये कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं, वाखिर दावा अलहमदुलिल्लाह।